તારીખ 26/12/1993 શ્રી મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 4. મૂળ કેસેટમાં ખૂબ જ ડિસ્ટર્બન્સ છે તથા અવાજ ખરાબ છે.
वो परम निरपेक्ष है. परम निरपेक्ष माने क्या? कि न तो कोई दूसरे पदार्थ के आधार से वो उत्पन्न होते हैं और कोई राग के आधार से भी या किसी भी प्रकार के पूर्व प्रकार के कारण से परम निरपेक्ष. नियम सार की दूसरी व्याख्या की टीका का आधार दिया है. इस पर नियम परमात्म तत्व के सम्यक प्रधान ज्ञान अनुष्ठान रूप शुद्ध रश्मिकलात्मक मार्ग परम निरपेक्ष होने से मोक्ष का मार्ग है और ये शुद्ध रत्न त्रय का फल निज शुद्धात्मा की प्राप्ति है. ऐसे परिणामों में अपना स्वरूप का अवलंबन और आधार होता है, पर उसमें इस परिणामों को दूसरा किसी का आधार नहीं होता. यहाँ पर कुछ प्रश्न का या तर्क का अवकाश यह तो रुकना है कि इसके पीछे जो सूत्र आता है निसर्गा त्रि नमात्मा, ये सूत्र है और तीसरा नंबर का सन निसर्गा तक मैंने समय दर्शन निसर्ग से और अजीत बच्चे निसर्ग में किसी निमित्त का वहां अवगमन नहीं है, लेकिन अधिगम में तो किसी न किसी निमित्त का निर्देश किया गया है. तो ये मोक्ष मार्ग परम निरपेक्ष है ऐसा जो विधान है, इस विधान में और इस विधान में कुछ परस्पर विरोधता है या नहीं, उतना विचार यहाँ पर अवश्य कर लेना चाहिए. अब देखिए का एक समोषण है, उसके भगवान और भगवान की वाणी विद्यमान है और ऐसे विद्यमानता में किसी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो रही है. पर क्या बनता है इस प्रश्न को अधिगमात सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ, अधिगम से सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ ऐसा कहने में आता है. तो उस वक्त क्या बना, क्या हुआ कि भगवान के माने सुनने वाले का उपयोग जब तक वाणी को सुनने में लगा हुआ था तब तक तो सम्य दर्शन नहीं हुआ. वाणी का तो उपयोग छूट जाता है और वाणी को सुनने का राग विकल्प है उसकी जो उपेक्षा हो जाती है और भीतर में स्वरूप का अवलंबन आता है तब समय दर्शन के प्रति तो समय दर्शन की उत्पत्ति एक ही प्रकार से होती है, दो प्रकार से कभी नहीं होती. विसर्गा होती है तो भी स्वरूप का अवलंबन से होती है यदि नमाज से होती है तो भी परंपरा इसलिए शून्य प्रश्न की उत्पत्ति का बीज ही दो प्रकार के परिणाम की है ऐसा तो मूल में नहीं है। लेकिन जब ऐसा होता है तो अनुकूल संयोग होता भी है और अनुकूल संयोग नहीं भी होता है। ऐसा निमित्त का सद्भाव और निमित्त का अभाव बाहर में हो सकता है, अंतर में इससे कोई फर्क पड़ता है ऐसा नहीं पड़ता है। इसलिए मोक्ष मार्ग है वो परम निरपेक्ष है। क्यों? कि मोक्ष मार्ग के परिणाम समय श्रद्धान के, समय ज्ञान के, समय आचरण के सभी परिणाम अंतर्मुख परिणाम है, अंतर्मुखी परिणमन है वो, और अंतर्मुखी परिणमन में बाह्य किसी भी प्रकार के द्रव्य भाव का अवलंबन नहीं रहता। जहां तक बाह्य परिणाम है वहां तक बाह्य जीवित का अवलंबन रहता है, वहां तक समय दर्शन की प्राप्ति मनुष्य को होती है। इसलिए मोक्ष मार्ग निरपेक्ष है। मोक्ष मार्ग के परिणाम माने अंतर्मुखी परिणाम प्रधान के ज्ञान के और आचरण के जितने भी परिणाम बहिर्मुख है ये मोक्ष मार्ग के परिणाम नहीं है। ज्ञानी के अवलोकन ये मन मार्ग के परिणाम है, मोक्ष मार्ग के परिणाम नहीं है। जितने अंश में साधक को बाह्य परिणाम है उतने अंश में मोक्ष मार्ग का अभाव है। जितने अंश में अंतर्मुखी परिणाम है उतने अंश में ही मोक्ष मार्ग है। सारिकों में तो बाह्य परिणाम में राग की उत्पत्ति अवश्य भावी है, लेकिन ज्ञान के परिणाम भी जितने बहिर्मुख है वो मोक्ष मार्ग के साधक नहीं होते। ऐसे परिणाम चाहे सदगुरु के प्रति हो, ऐसे परिणाम चाहे साक्षात शंकर देव विराजमान हो इसके प्रति हो या शास्त्र प्रधान के प्रति हो, इन परिणाम आत्मसाधक नहीं है, आत्मा को साध रहे नहीं साधन नहीं है। लेकिन जितने अंश में है उतने अंश में अवश्य बाधक है।
श्री गुरु की वाणी संवेदना में कैसे काम करती
तो ऐसा निमित्त देखिए संबंध दिखाने की बात है। अधिक मात्रा वास्तव में जो अंतर्मुख परिणाम है वहां बाह्य पदार्थ का कोई विषय होता नहीं। इस परिणाम को मोक्ष मार्ग के परिणाम का विषय कौन इतना ही विचार करें तो मोक्ष मार्ग के परिणाम के विषय भूत एक अपना सिद्धात्मा ही है। इसके अलावा कोई मोक्ष मार्ग के परिणाम का विषय हो सकता नहीं है। कहीं भी जीव हो मोक्ष मार्ग ये इसका निरवार वस्तु स्थिति का कथन है, उसमें कहीं अपवाद को नहीं होता। इस सूत्र में समय दर्शन जो कहा है वो निश्चय समय दर्शन है। यहाँ जो दर्शन शब्द से हमने दर्शन कहा है, विशेषण और वो बात तीसरे सूत्र से सिद्ध होता है। क्यों हाँ निसर्ग अधिगमय ऐसा जो भेद कहा है वो विशेष उन्मित दर्शन का भेद कहा है, निमित का सद्भाव और निमित का अभाव दिखाने के लिए। समझे दर्शन दो प्रकार का नहीं, दो प्रकार के परिणाम से भी समझे दर्शन नहीं है। समय दर्शन कितने प्रकार के?
वैसे तो निश्चय निश्चय व्यवहार उपचार से बोला जाता है व्यवहार को,
ऐसा कहते हैं। और आरंभ दीक्षा में समय दर्शन के भेद तीन प्रकार के बताए जाएंगे, उपशम क्षयोपशम और शारीरिक। फिर भी मौका उपशम है, मौका क्षयोपशम है और मौका क्षय है। न तो संयम दर्शन का उपशम है, न तो संयम दर्शन का क्षयोपशम है, न तो संयम दर्शन का क्षय है। संयम दर्शन का क्षय होने तो संयम दर्शन का अभाव हो जाए। ये तीनों विशेषण मनों को लागू होता है, मनों का निर्देश करता है संयम दर्शन का। संयम के संग संयम दर्शन है, जैसा है वैसा अपने स्वरूप में है। तीनों भेद में संयम दर्शन में कुछ फर्क है। इस बात फिर और बात आती है तेरे मुस्कान में या सिद्ध पद में संयम दर्शन को परम अवधान संयम दर्शन। दूसरे दूसरे गुण की अपेक्षा से बात है। सम्यक दर्शन माने श्रद्धान का स्वभाव को एक साथ पूरी शक्ति से परिणाम करने का ही है, ऐसी बात है। और यह सूत्र की संस्कृत की का श्री तत्वार्थ राजवार्तिक में जो कारिका और व्याख्या द्वारा वर्णन किया गया है, उस आधार से यह सूत्र और दूसरे सूत्र में कहे हुए संयम दर्शन यह निश्चय संयम दर्शन है ऐसा सिद्ध होता है। तत्वार्थ श्रद्धानं संयम दर्शनम ऐसा लिया है। नौ तत्व की श्रद्धा संयम दर्शन है। संयम दर्शन का विषय कौन? संयम दर्शन का विषय श्रद्धा शुद्ध आत्मा या संयम दर्शन का विषय नौ तत्व
शुद्ध आत्मा? नौ तत्व वाला शुद्ध आत्मा
नौ तत्व में तो पाप तत्व भी आता है।
इसको सच्ची तरह से समझे तो आत्मा का समझ हो सकता है, शुद्ध नहीं इसमें।
नौ तत्व भूतार्थ नयात्रिक जब भूतार्थ में ज्ञान की पर्याय है तो श्रद्धान की है, नौ तत्व का परिज्ञान जिसको होता है उसको अविनाभावी रूप से सम्यक संधान होता है, ऐसा दर्शाने के लिए नौ तत्व की यथार्थ श्रद्धा जो सम्यक प्रसन्न कहते हैं। किंतु संयम दर्शन का विषय नव तत्व कभी होता नहीं है। संयम दर्शन का विषय तो आत्मा ही होता है। तो ये श्रद्धा की परिभाषा ज्ञान प्रधान है। क्या यह प्रमाण शुभ मान का विधान है, वास्तव में श्रद्धा प्रमाण ही श्रद्धा का विधान। पहले भी थोड़ी बात करी थी कि श्रद्धा प्रधान, ज्ञान प्रधान, आचरण प्रधान, पुरुषार्थ प्रधान, सुख प्रधान, सब तरह से संगे विश्व को कह सकते हैं। इसे संगे ज्ञान को भी पात्र तरह से कह सकते हैं, संगे चरित्र को भी पात्र तरह से कह सकते हैं, संगे पुरुषार्थ को भी पात्र तरह से कह सकते हैं। तत्वानुशील में शक्ति सी ने वो बात सुन लिया। क्या देखो निश्चित समय दर्शन है, व्यवहार में एक दर्शन की बात यहां नहीं चली है। ये बात को तत्वाचार्यवाद नास्तिक का जो सूत्र इस सूत्र के आधार जो टीका अच्छी है उसका आधार दिया है, तथा इस सूत्र में ज्ञान कहा है वह भी निश्चय शब्द ज्ञान है। तीनों निश्चय है, योग ज्ञान शुद्धात्मा का आश्रय करके अनुभव करता है, इसी को ज्ञान शब्द ज्ञान आत्मज्ञान कहा है, मोक्ष मार्ग वाला ज्ञान कहा है। गुरुदेव तो वहां तक कहते थे कि जिस ज्ञान से गंधर्व देव महाराज की रचना करते हैं और गंधर्व देव का ये उपयोग दृढ़ रूप में लगा है, वो ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं है। वो बात गोरण मजे ने अपनी रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कही है, पर सत्तावलंबन ज्ञान मोक्ष का मार्ग है ऐसा कोई ज्ञानी कभी कहते कहेंगे नहीं, ऐसा लिया है। पर सत्ता का अवलंबन सर्वथा निषिद्ध है, क्या श्रद्धान से ज्ञान से और आचरण शास्त्र पढ़ना ही मुख्य बात है, ये बात रहती गंधर्वदेव द्वारा शास्त्र की रचना हुई तो गंधर्वदेव द्वारा शास्त्र की रचना हुई वो क्यों भी मुख्य साधक नहीं है, क्योंकि वो शास्त्र पढ़ने वाले का उपयोग मुख्य साधक है, तो बात नहीं तो शास्त्र नहीं करेंगे। ऐसा नहीं बनता सर, ऐसा भी नहीं बनता, क्योंकि जो बात जाता है तो वेद होता है उपयोग कहा जाए उसको कहा जाना, ऐसा ज्ञान में मुझे रहता है हमेशा रहता है। इस सूत्र में ज्ञान पर है और निश्चय शून्य ज्ञान को सूचित करता है, यानी इस सूत्र में जो ज्ञान पर है तो स्वरूप आसन ज्ञान की बात चली है, कोई पराशन ज्ञान की बात नहीं चली है, इसलिए उसको विशेष संकेत ज्ञान कहना व्यवहार ज्ञान की बात नहीं चली। अध्याय इस पहले में हमने इसी अध्याय में सूत्र छठवां सूत्र में ज्ञान का पांच भेद कहा है, ज्ञान के पीछे मते सूत्री भरना पड़ेगा केवल, उसमें ही मनोपर्य और केवल ज्ञान, उसमें ही मनोपर्य और केवल ज्ञान में आ जाता है, इससे सिद्ध होता है। इसलिए ये सिद्ध होता है कि यहाँ निश्चय सम्य ज्ञान कहा है, जो सम्य ज्ञान कहा है वो व्यवहार ज्ञान की बात नहीं है। निश्चय स्वरूप को अवलंबन लेने वाला ज्ञान को निश्चय ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का नाम निश्चय क्यों पड़ा, उसको निश्चय ज्ञान ऐसा क्यों कहा? निश्चय स्वरूप को विषय करता है मेरे को सुनने क्यों कहा, शुद्ध स्वरूप को विषय करता है इसलिए उसको सुनने कहा। ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन जो जो उदय का विषय है, जो जो ज्ञान का विषय है, किसी पर से उस ज्ञान के अंश का नाम दिया गया है जो अनेक प्रकार के नए हैं। इन प्रति इसके बाद यह सूत्र में चारित्र शब्द निश्चय शाम सम्यक चारित्र बताने के लिए कहा गया है। चारित्र प्राणी तीन वर्ण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीन वर्ण इसलिए चारित्र प्राणी ऐसा कहा। वो भी निश्चय सम्यक चारित्र बताने के लिए कहा है। श्री तत्वार्थ राजवार्तिक में यह सूत्र कथित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को विशेष सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र माना हुआ है, क्योंकि व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आश्रय और बंध रूप है। जबकि ये मुख्य मार्ग का कथन चल रहा है, व्यवहार के परिणाम पुण्यास्वरूप के और पुण्यगंध के कारण होते हैं, और निश्चय परिणाम मोक्ष के साधक होते हैं, जो बंध का प्रभाव को कहते हैं। इसलिए यह सूत्र का अर्थ करने में तीनों आत्मा की शुद्ध पर्याय है, आत्मा के तीनों गुणों की ये शुद्ध पर्याय है और आत्मा के अवलंबन में है ये तीनों पर्याय। ऐसा तीनों का एक परिणाम को यहाँ मोक्ष मार्ग कहने में आया है। इसलिए कहीं भी बहिर्मुख परिणाम को मोक्ष मार्ग मानने की कल्पना नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से शास्त्रकार ने दर्शाया है, ऐसा निर्णय स्पष्ट होता है। इस विषय पर सिद्धांतिक बात क्या क्या सिद्ध होती है, इसका भी निराकरण यहाँ पर दिया गया है। अज्ञान दशा में सभी जीव दुख का भोगवता कर रहा है, दुख का भोग रहे हैं सभी जीव। एक भी अज्ञानी जीव संसार में सुखी है ऐसा नहीं है। अज्ञान दशा में आत्मा का जो सुख नाम का गुण है, उसकी अशुद्ध विपरीत अवस्था दुख रूप निरंतर परिणमन कर ही रही है। हाँ, कोई ऐसा कहता है कि हमको तो सुख है, हम तो सुखी हो गए, ऐसा कोई कहे, ऐसा कोई माने, तो क्या वो वास्तव में सुखी है क्या? तो दुख में सुख की कल्पना करता है, दुख में सुख की कल्पना करता है, वास्तव में नहीं सुख है।
आत्मा सर्वथा अंतर्मुखी पदार्थ की सर्वथा निरशेष अंतर्मुखपणा रहे यही इसका स्वभाव स्वरूप होने परिणाम जब बाहर निकलता है तो आत्मा को ही झटका लगता है। क्या लगता है झटका निपटा है क्या आज दुखे तो नहीं लगता है इसलिए नहीं है ऐसी बात बाहर जाता है नया झटके से उसमें दुख ही दुख है कहीं इसमें सुख ऐसी बात शून्य दर्शन शून्य ज्ञान शून्य कार्यक्रम साधन के समय जी जो कुछ अंश हो गए मुस्कान अनुसार फिर कुछ अंश में जो परिणाम बाहर जा रहे हैं उसको शोर कहते हैं खलबली खलबली होती है जीकर में क्या उसमें अंश में खलबली होती है और उसको चारित्र कहते हैं आता है प्रवचन काल में भगवान कुंद आचार्य से कहते हैं चारित्र को हम भोग शोभ रही परिणाम को हम चारित्र कहते हैं चारित्र किसको कहते
हैं
जिसमें क्षोभ नहीं हो खलबली नहीं हो उसको हम साम्य भाव रूप सौम्य भाव रूप शांत भाव रूप चारित्र कहते हैं किसी का नाम चारित्र है तो बाकी कोई पंचमानवत के परिणाम है अट्ठाईस मुर्मू के परिणाम है उसको हम आत्मा का चारित्र भी कहते हैं जैसा में तो होते हैं कि जितना है उतना वो चारित्र का परिणाम है कितने चारित्र के हैं चारित्र का व्यवहार चारित्र मैंने है चारित्र निश्चय चारित्र मैंने चारित्र ऐसी बात नहीं अज्ञान दशा में सभी जीव दुख भोग रहे हैं इसका कारण यह है कि उनको अपना स्वरूप की भ्रमणा है क्या है ज्ञान का प्रयास उसको भ्रम है मैं फलाना हूं आत्मा हूं ऐसा अनुभव नहीं रहता जिसको और जो भी कर्मदायक अवस्था में वैसा मैं हूं ऐसा ज्ञान अज्ञान है और ये नितान हमारा है क्योंकि आत्मा ऐसा नहीं मुझ से आत्मा ऐसा नहीं इस भ्रमणा को श्रद्धा की अपेक्षा से दिशा दर्शन कहने में आता है भ्रमणा ज्ञान की पर्याय है और उसी वक्त अविनाभावी रूप से दिशा दर्शन होने से उसको दिशा दर्शन भी कहने में आता है अज्ञान और दिशा दर्शन साथ में होते हैं सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान भी साथ में होते हैं दर्शन का यहाँ पर मान्यता है दर्शन का अर्थ यहाँ दर्शन उपयोग नहीं लेना
झटके वाली बात जो कही आपने तो सम्य दृष्टि को ऐसा प्रतिभास होता है पर में जब उपयोग आता है झटका आपने और क्षण में नहीं होना चाहिए वो क्षण में नहीं आने के लिए
आप बैठे नहीं कर आपका किसी एक अंग को
हाथ को, पैर को, कान को, जो भी पकड़ने में आ
जी,
उसको फिर खींचे तो क्या होता है, दर्द होता है, तो परिणाम से जीव का अंग है। परिणाम क्या है कि जीव का अंग भूत है, तो उसको अगर बाहर नहीं हंसता है तो क्या होगा,
अलंकारिक भाषा से रियली आपने परसेप्टेबली लागे झटको लागो थे, अलंकारिक भाषा से खरेखर आपने झटको जेन्युइन लागे नहीं नहीं दैट मीन्स कंपैरिजन करने के लिए ऐसा जात का शब्द का इस्तेमाल किया आपने।
जो लोग बड़े शहर के गटर के किनारे रहते हैं और अपने की खाई की है या सारे मुद्दे की कटक जो है उनके पास वहाँ भी जुगड़ सकती है, हम लोग रहते हैं शक्ति है इसका एक सबूत है कि अनंत दुख को भी भोगने में असमर्थ है, इसलिए वो अनंत सुख भोगने में भी समर्थ है, यहाँ से निकलता है। शक्ति को समझना है तो विपर्यास में भी शक्ति को शक्ति होती है, परिणाम से विपरीत और विपरीतता होती है, शक्ति में नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी है वो शक्ति है, पावर जिसको कहते हैं, पावर आया नहीं आया कहते हैं, तो पावर ठंडा या गर्म ठंडा होता है गर्म होता है,
तो पावर पावर
पावर तो पावर ही होता है, ठंडा है गर्म पावर के बाद में रेपिंग डायरेक्टर से लगाओ तो ठंडा हो जाएगा, आइस बनने लगेगा, हीटर को लगाओ तो गर्म होने लगेगा, एसी को लगाओ तो ठंडा लगेगा, गीजर को लगाओ तो गर्म पानी आने लगेगा, पंखे को लगाओ तो घूमने लगेगा, मोटर को घूमने लगेगा, ये तो पावर है, पावर में तो उसकी कोई पर्याय नहीं है, गर्म ठंडा गति आगति कोई पावर में कोई पर्याय यही नहीं होती। ऐसे आत्मा शक्ति का पिंड है, क्या है
शक्ति का पिंड,
आत्मा अनंत शक्तियों का पिंड है, इसकी प्रकृति आती है, तो जो भी अनंत गुण को भोगता हुआ भी वो कहता है नहीं मुझे दुख नहीं लगता है, शक्ति का द्योतक है, वो शक्ति को प्रसिद्ध करता है, जिस शक्ति का तो कहीं से भी परिचय हो सकता है, परिचय करने से पति की पहचान आ जाएगी, परिचय करना चाहिए, ये इसका प्रैक्टिकल है, उनका भी प्रैक्टिकल हो ही रहा है,
इसे पता लग रहा है तीव्र प्रसाद चल रहा बेटा,
तीव्र उंगला प्रसाद चलता है तो तीव्र उंगली होती है परिणाम में, और तीव्र गुण है एक मिथ्या दृष्टि के परिणाम में दुख कितना अनंत दुख है, भगवान कहते हैं कि अनंत दुख है, अब तो मेरा ज्ञान अनंत दुख नहीं है, थोड़ा ही है ज्यादा नहीं है, भगवान को ज्ञान को भगवान के स्वरूप को मानता नहीं, वास्तव में तो है नहीं लगता है तो आदत बन गई, इसलिए नहीं लगता है, नहीं लगे नहीं है ऐसा है, एक आदमी को किसी ने छुराक मार दिया, दर्द हुआ कि नहीं हुआ सुधर हुआ, फिर दूसरा मारा तीसरा मारा,
जिसको सुना लग रहा हो नहीं 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 नहीं, नहीं मार मत मारो मत मारो क्या करेगा तो वो मारता जाता है। हालत क्या होती है वो बेशुद्ध हो जाता है दर्द के मारा दुख का मारा हुआ वो फिर भी कोई मारता है उसको चालू रखता है तो क्या उसको दर्द का पता नहीं चलता है मान नहीं है इसलिए उसको दुख नहीं होता है क्या
पहले भी नहीं नहीं होता पहले भी नहीं था बाकी
जो भी हो रहे हैं उसका पता चले तो दुख नहीं पता नहीं चले तो दुख नहीं ऐसी बात नहीं है ना ना लेना है वो लेना कि पता चला दुख होता है तो दुख है और पता नहीं चला तो दुख नहीं है ऐसा नहीं है दुख तो होता ही है कि डॉक्टर लोग एनेस्थेसिया वगैरह ऑपरेशन
जी
इस बात से वहाँ दुख होता है नहीं होता है दुख होता है लगता नहीं अलग बात है लेकिन होता तो यही अशाता का उदय वहाँ होता है तो अशाता का उदय होता ही उपयोग की स्थिति बदलती है वहाँ इसलिए नहीं लगता है तो सही नहीं है कि बात मुख्यादर्शन यानी उल्टी मान्यता खोटी मान्यता अपने स्वरूप की खोटी मान्यता झूठी मान्यता हो वहां अपने स्वरूप का ज्ञान भी जीव को झूठा ही होता है जहां मान्यता झूठी वहां ज्ञान भी झूठा जहां ज्ञान झूठा वहां मान्यता भी झूठी दोनों साथ रहता है स्वरूप के विषय में। इस झूठा ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं उसकी तो चर्चा अपनी बहुत सकती है। जैसे ज्ञान किसी अन्य इंद्रिय और अन्य भाव को वेदन कर सकता नहीं है तो हम कहते हैं कि हमको ठंड लगती है तो ये मिथ्या ज्ञान है। अगर ठंड लगती हो तो मुनि दशा में जंगल में कोई रह सकते गर्मी में भी बहुत दुख हो सर्दी में भी बहुत दुख हो लेकिन मुनि तो एकदम सुखी मुनि की तरह बहुत सुखी है बिल्कुल दुखी नहीं है बहुत सुखी है। इसका मतलब कि ज्ञान को अन्य कुछ लगना होता नहीं है जानना होता है लगने का होता नहीं है मिथ्या ज्ञान है। जहां स्वरूप की झूठी मान्यता और झूठा ज्ञान हो वहां चारित्र सच्चा हो ऐसा तो कभी बच सकता नहीं है। भले ही हमको समय प्रश्न की खबर नहीं हमको पढ़े मावल पालन करते हैं इसलिए हमारा चारित्र सच्चा है हो सकता है कि नहीं ऐसा हो सकता
नहीं।
जहां संग्रह दर्शन संग्रह ज्ञान नहीं है वहां मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान है और वहां चारित्र भी मिथ्या ही होता है। इस मिथ्या इस झूठा चारित्र को मिथ्या चारित्र कहते हैं। अनादि से जीवन को मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र चला आ रहा है। सभी जीव को तीनों परिणाम उनसे ही चल रहे हैं इसलिए जीव अनादि से दुख भोग रहे हैं। इसका फल क्या है बात की चर्चा प्रयोजन का विषय जो सुख है और प्रयोजन का विषय जो दुख है इस विषय में ले जाते हैं।
दरिद्रता नहीं है, दुख का कारण रोग नहीं है, दुख का कारण प्रतिकूलता नहीं है, दुख का कारण नरक नहीं है, सुख का कारण स्वर्ग नहीं है। संपत्ति सुख का कारण है, दरिद्री दरिद्रता दुख का कारण, इसलिए इस विषय को अलौकिक विषय ऐसा कहने में आता है। लौकिक में अभिमान नहीं होती, लौकिक में तो सुख की व्याख्या अलग है, दुख की व्याख्या अलग है, ज्ञान की व्याख्या बिल्कुल अलग है। अपनी यह दशा जीव स्वयं करता है, ऐसी दुखमय दशा कौन करता है? जीव स्वयं करता है। इसलिए ऐसी दशा का अभाव भी, इसको टालना भी जीव स्वयं करता है। अगर दूसरा रूप देता है तो सुख भी दूसरा देगा, दुखी होने में हम पराधीन है तो सुखी होने में भी पराधीन हो जाएंगे। वास्तव में सुख भी स्वाधीन और दुख भी स्वाधीन है। एक सिद्धांत ऐसा है सुख दुख के विषय कि जब जब हमारे जीव को दुख हो जाए, दुख का अनुभव हो, तो दूसरा और कुछ विचार नहीं करके इस विचार में चले जाना चाहिए कि किस प्रकार का अज्ञान भरता है कि जीव को भी दुख हो रहा है। क्योंकि ज्ञान से कभी किसी को सही ज्ञान से दुख होता नहीं। सच्चा ज्ञान सुख का साधक है और मिथ्या ज्ञान अज्ञान दुख का साधक है। जब दुख का अनुभव हुए तब यही देखना है कि कैसा अज्ञान है, किस प्रकार का अज्ञान हो रहा है। पर्याय दृष्टि में दुख ही दुख है, क्योंकि पर्याय दृष्टि में क्रम पर्याय है संसार में, शुभ पर्याय तो है, इसलिए पर्याय दृष्टि में ऐसा मैं हूं, जैसे पर्याय है ऐसा मैं हूं, दुख है। और दृढ़ दृष्टि में सुख है, क्योंकि सुख का भंडार है ना, तो वहां पर सुख का प्रवाह जो है अनुभव में आता है। दुख को टालने का उपाय ही सुमिंद्र संज्ञा चालक ही है। दुख का उपाय टालने का कोई दूसरा उपाय हो सकता नहीं है। बाह्य घात का सुख दुख भोगे, अंतर क्षेत्र दुख का कारण समीप दृष्टि को नहीं होता। क्या सिद्ध किया है? नरक का क्षेत्र समीप दृष्टि को दुख का कारण नहीं होता, ना नया समीप दृष्टि होता है। सातवीं नरक की अनंत वेदना को उल्लंघन करके उपयोग भीतर में चला जाता है, समय दर्शन समय ज्ञान समय चारित्र उत्पन्न हो जाता है और नया आत्मिक सुख का सिद्ध पद में जो सुख है उसी जाति का सुख का अनुभव वहां होने लगता है। कितनी ताकत है कि सातवीं नारके का दुख भी वहां दुख का प्रतिकूलता भी दुख का अनुभव कराने के लिए समर्थ नहीं रहे, क्योंकि इससे दुख नहीं होता था। हमारे यहां थोड़ी वेदना होती है
तो लगता है कि हमें दुख हुआ शरीर में रोग आदि कोई होता है थोड़ी वेदना से दुख लगता है। वेदना से दुख नहीं हो रहा है, वास्तव में वेदना से दुख
नहीं हो रहा,
वेदना हमें हो रही है इसका दुख है, बाकी क्या दुख है, वेदना हमको हो रही है इसका दुख है, वेदना का दुख नहीं है, वो तो ज्ञान कर रही है। ज्ञानी को वेदना होती है तो सुख भाव में रहते रहते वेदना को जानते हैं, क्या सुखी होते होते वेदना का ज्ञान करते हैं, लेकिन वेदना को मेरे में अपने में होती है ऐसा अनुभव करते नहीं।
ज्ञानी का वेदन करते हैं, ज्ञानी ज्ञान का वेदन करते
हैं, ज्ञान का वेदन
जी
वेदना का
वेदन नहीं
करते नहीं, और जानते हैं कि कर सकते भी
नहीं,
जब असत्य है तो कैसे कर सकते हैं, कर सकते नहीं है। दूसरा तत्व अन्य तत्व अन्य तत्व दिखता है तो स्वतंत्र कैसे होता है, जब आपको मेरा शरीर दिखता है तो ये मेरा है ऐसा कोई आपको लगता है कभी, क्यों लगा हुआ है, लगाना चाहो तो
मिलेगा
नहीं लग सकता, क्योंकि दिखता है वो आपका है, वो कैसे लग सकता है, शनि ज्ञान में कल्पना उत्पन्न कर सकते हैं और कल्पना में शनि ज्ञान
होता नहीं,
हो सकता है कितनी वास्तविकता दिखता है, ये धर्म के परिणाम में वास्तविकता कितनी है, कितनी वास्तविकता है कहें ये कल्पना नहीं है, ठोस मार्ग है। इसलिए दुख को टालने का दूसरा उपाय नहीं है ऐसा भी यहां सिद्ध होता है, इससे और भी सिद्ध होता है कि दुख टालने का दूसरा अन्य उपाय करता है वो सभी झूठा है, क्या कहता है वो,
ये
अब दर्द हो गए तो दर्द का दुख मिटाने के लिए दवाई करना कि नहीं करना, क्या करना,
ज्ञान में तो ऐसा होना चाहिए कि मेरे से कुछ नहीं, वो चाहे तो मुंह का राग से असर होता है कि मैं दवा लूं,
ज्ञान में तो दर्द मुझे मेरे में है ही नहीं, जब दर्द मेरे में नहीं तो दर्द का दुख भी मेरे में नहीं है, दर्द की दवाई नहीं करना है, जो भी ज्ञानी को अस्थिरता का राग है उसकी दवाई करते हैं, दर्द की दवाई नहीं करते हैं, क्योंकि वो कर सकते नहीं, क्या लगता है उसको कर सकते नहीं है, जब स्थिति में कर सकते नहीं है बालू में जल में निकालने का काम कौन करेगा, कोई करेगा,
वो इतने जानते हुए भी एक दिवस दूसरे दिवस कुछ भी नहीं कर सकता, इतना परिस्थिति जानते हुए भी इसको इतना चारित्र की अस्थिरता आ जाती है कि दवा लेने का मन होता है और दवा से मेरे को अच्छा होगा ऐसा भी ऐसे मानते हैं,
वो क्या है कि दवा की असर होती है ऐसा नहीं मानते, वो तो उनके काम होता है, ये परिणाम को बैलेंस करने के दूसरे परिणाम है, क्या परिणाम को कुछ हद से गिर नहीं जाए इसके लिए उपाय है, तो हटकर तो क्या होगा परिणाम गिर जाएंगे, अपनी शक्ति के परिणाम शक्ति का नाम आ जाता है, उसी अनुसार उनको बैलेंस रखता है, उतनी बात है, ऐसा कभी नहीं जानता कि दवाई लेने से दर्द मिलेगा या दवाई लेने से मेरा दुख मिल जाएगा, क्योंकि दुख तो मेरा है ही नहीं, मेरे में तो दुख है ही नहीं, ऐसी बात।
ये गजब बात की आपने, पीछे की बात गजब किया, बैलेंस वाली बात
नास्तिक अच्छे
रखने के लिए परिणाम आते हैं, घट कर परिणाम इन बैलेंस हो जाएंगे और परिणाम गिर जाएंगे। उसको अपनी शक्ति को जानते हुए थोड़ा वो बैलेंसिंग काम करते हैं, उससे ज्यादा करते नहीं है। जीव धर्म करना चाहता है किंतु उसे सच्चा उपाय की खबर नहीं होने से यह झूठा उपाय किए बिना रहता
है।
धर्म करना चाहता है, सुखी होना चाहता है, लेकिन सच्चा उपाय नहीं मिलता है तो झूठा उपाय कर लेता है। धर्म के बजाय धर्म की प्राप्ति, सुख के बजाय दुख की प्राप्ति दुखी है, ऐसा चाहते नहीं है लेकिन अज्ञान से ऐसा हो जाता है। जानबूझ के कोई करते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन अज्ञान से ऐसा होता है। इसलिए जीवों को ऐसी महान भूल डालने के लिए प्रथम दिन समय दर्शन समय ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, ये सबसे पहली बात है। बहुत बार गुरुदेव को प्रवचन का प्रारंभ भी यहां से कर रहे हैं कि योगा सुखी होने के लिए है, जीव को सुखी होने के लिए ये बात कह रहे हैं। सुखी माने क्या, हमको संयम मिल जाए वो बात नहीं है, यहां अंतर सुख प्रकट कराने के लिए ये बात कहने में आती है। जिसको सुखी होना हो तो इस बात को अंगीकार करे, वरना दुख अनिवार्य रूप से भोगना ये बात है। जगत में जितने भी जीव दुख भोग रहे हैं इन्हीं कारण है, सुखी होने का रास्ता को ढूंढते नहीं, अंगीकार करते नहीं और जानते भी नहीं है, यही कारण से दुखी हो रहे हैं, दूसरा कुछ कारण नहीं है। इसके बिना धर्म की शुरुआत होती है, कभी भी किसी को होती है इसके बिना समय दर्शन के बिना ऐसा कभी बनता नहीं है और वहां से दुख मिलने का भी कोई रास्ता नहीं है। इतना सुंदर बात है। जिनेन्द्र का इत्थम बुद्धवा जिनेन्द्र मार्ग निर्वाण कारण, मार्ग निर्वाण कारण तो इस प्रकार से जिनेन्द्र का मार्ग निर्वाण का कारण है, उसको जान करके जो भी इस मार्ग को प्राप्त हुए हैं ऐसा करके विचार कर लिया है तब हम मंदिर ऐसा
साक्षी क्या सांगू कौन साक्ष्य रखे
पौने आठ घंटे पौन घंटा होता है ना
शाम को, एक घंटे का होता
है।
अच्छा पौने आठ तो होता है,
आजकल आठ में फास्ट तक होते हैं। मैं तो बाद में जवाब बोलना चाहता था, सबको जाने का।